नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के हस्तांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को छोड़कर विध्वंस कार्य और धूल उत्पन्न करने वाले खुले निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और ये 28 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण लिया है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह आज बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।